शख्स आपकी खिदमत में हाजिर होगा जिसका चेहरा पीठ की जानिब होगा। वो कहेगा, ए मेरे सरदार, मेरा नाम बशीर है और मुझे एक फरिश्ते ने आपकी खिदमत में भेजा है ताकि आपको सुफियानी के लश्कर की हलाकत की बशारत दूँ। फिर हजरत कायम आले मोहम्मद अज्जल अल्लाह ताला फरजो शरीफ फरमाएंगे, तुम अपना और अपने भाई का किस्सा लोगों के सामने बयान करो। बशीर कहेगा, मैं और मेरा भाई सुफियानी के लश्कर का हिस्सा थे। हमने दमिश्क से बगदाद और फिर कूफा से मदीने तक तमाम इलाकों को ताराज किया। हमने मस्जिद नबवी के मिंबर की तोड़फोड़ की, मस्जिद नबवी की बेहरमती की और हमारे लश्कर की कुल तादाद 3 लाख थी। अभी हम काबे को ताराज करना ही चाहते थे और इसके साथ हमारा इरादा वहाँ मुकीम लोगों का कत्लेआम था कि जब हम सहराए बैदा में पहुंचे तो मदीना के मदाफात में वाक़े है, वहाँ रात को पड़ाव डाला तो आसमान से एक आवाज़ आई, ए बैदा, इस जालिम गिरोह को हलाक कर दे। ज़मीन फटी और तमाम लश्कर, हैवानात, माल, असबाब समेत ज़मीन में धस गया। इस लश्कर की कोई चीज़ बाकी न बची सिवाय मेरे और मेरे भाई के। अचानक एक फरिश्ता हमारे करीब आया और उसने हमारे चेहरों को हमारी पीठ की तरफ मोड़ दिया, जैसा कि आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इसके बाद वो अपने भाई से कहेगा कि नज़ीर, सुफियानी मलाउन के पास जाओ दमिश्क और उसे महदी आले मोहम्मद के जहूर से डराओ और उसको लश्कर की वादी बैदा में हलाकत की इत्तला दो। और मुझसे कहा, ए बशीर, जा मक्का महदी आले मोहम्मद अज्जल अल्लाह ताला फरजहू शरीफ की खिदमत में हाजिर हो जा और उन्हें जालिमों की हलाकत की बशारत दो और हजरत के हाथ पर तौबा करो, वो तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएंगे। बस हजरत कायम आले मोहम्मद अपना दस्त मुताहर बशीर के चेहरे पर मलेंगे तो वो पहले जैसा हो जाएगा और उसके बाद वो हजरत की बैत करेगा और खुश खुर्रम आपके लश्कर में शामिल हो जाएगा। मुफद्दल ने पूछा, ए मेरे सरदार, क्या उस जमाने में मलाइका और जिन इंसानों पर जाहिर हो जाएंगे? फरमाया, हाँ वल्ला ए मुफज़ल, बल्कि उनसे गुफ्तगू करने लगेंगे जिस तरह से कोई शख्स अपने अहलो आयाल और दोस्तों से गुफ्तगू करता है। मुफज़ल ने पूछा, क्या मलाइका और जिन इमाम अलैहिस्सलाम के साथ होंगे? फरमाया, हाँ वल्ला ए मुफज़ल, आ हजरत उनके गिरोहों के साथ उतरेंगे और आपके लश्कर में नजफ और कूफा के अफराद के अलावा आपके असहाब और 46,000 मलाइका और एक दूसरी रिवायत में 46,000 जिन शामिल होंगे। खुदावंद तबारक व तआला इस लश्कर के साथ आपको सारे आलम पर फतह नुसरत अता फरमाएगा। मुफज़ल ने पूछा, ए मेरे मौला व आका, आ हजरत अहले मक्का के साथ क्या सलूक करेंगे? फरमाया, पहले तो उन्हें वाज़ और नसीहत के जरिए हक की तरफ दावत देंगे जिसकी वजह से ये लोग आपकी इताअत करेंगे और आप अपने खानदान में से एक शख्स को वहां खलीफा मुकर्रर करेंगे और वहां से निकलकर मदीना तय्यबा की तरफ रवाना हो जाएंगे। मुफज़ल ने पूछा, खाना काबा के साथ क्या करेंगे? मेरे मौला व आका इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काबे को गिरा देंगे और जिस तरह इब्राहिम इस्माइल ने उसकी बुनियाद रखी थी उस बुनियाद पर उसे दोबारा नए सिरे से तामीर करेंगे। आप जालिमों और गासिबों की तामीर शुदा तमाम इमारात को मक्का और मदीना और इराक और दूसरे ममालिक में गिरा देंगे और उसी तरह से मस्जिद कूफा को भी गिराकर नए सिरे से उसकी बुनियाद रखेंगे, कूफा के महल को गिरा देंगे क्योंकि जिस किसी ने उसकी बुनियाद रखी होगी मलाउन होगा। मुफज़ल ने पूछा, मौला से, क्या आप मक्का मौजमा में कयाम फरमाएंगे? मेरे मौला व आका इमाम सादिक ने फरमाया, नहीं ए मुफज़ल, बल्कि आप अपने अहले बैत में से किसी शख्स को वहाँ अपना जानशीन मुकर्रर करेंगे। लेकिन जो ही इमाम अलैहिस्सलाम मक्के से बाहर निकलेंगे मक्के वाले आपके खलीफा को जानशीन को कत्ल कर देंगे। इमाम अलैहिस्सलाम दोबारा मक्के वालों की तरफ मुतवज्जे होंगे तो मक्के के लोग सरे तस्लीम खम किए हुए आहो बुका करते हुए आपकी तरफ आएंगे और कहेंगे, ए महदी आले मोहम्मद, हम तौबा करते हैं, आप हमारी तौबा कबूल फरमाइए। इमाम उन्हें नसीहत फरमाएंगे, दुनिया व आखरत के आदाब से डराएंगे और एक मरतबा फिर अहले मक्का पर हाकिम मुकरर करेंगे और वहां से इमाम निकल जाएंगे। अहले मक्का दोबारा आपके हाकिम को कत्ल कर डालेंगे, उस पर इमाम अलैहिस्सलाम अपने साथियों को उनकी तरफ रवाना करेंगे ताकि मक्का वालों से कहें कि हक की तरफ लौट जाएं। फिर जो कोई ईमान लाएगा उसे बख्श दिया जाएगा, लेकिन जो कोई ईमान नहीं लाएगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम का लश्कर मक्का का रुख करेगा तो वहाँ के बासियों में से बहुत कम लोग ईमान लाएंगे, उनकी तादाद 1% भी नहीं होगी बल्कि 1,000 में से एक शख्स भी ईमान नहीं लाएगा। मुफज़ल ने पूछा, ए मेरे मौला व आका, ए मेरे सैयद व सरदार, हजरत महदी और आपके साथियों के इज्तमा की जगह कौन सी होगी? मेरे मौला व आका ने फरमाया, حضرت کا پایہ تخت شہر کوفہ ہوگا، آپ کے احکامات کوفہ سے جاری ہوں گے، اور بیت المال و مال غنیمت جمع کرنے کی جگہ مسجد سہلہ ہوگی، اور آپ کی خلوت کا مقام نجف اشرف ہوگا۔ مفضل نے پوچھا، کیا تمام مؤمنین کوفہ میں جمع ہوں گے؟ فرمایا، واللہ کوئی مومن نہیں ہوگا جو کوفے میں یا اس کے اطراف میں نہ ہو، یا اس کا دل کوفے کی طرف مائل نہ ہو۔ اس زمانے میں کوفہ میں جگہ کی قیمت آسمانوں سے بات کرنے لگے گی، یوں سمجھ لو کہ ایک بھیڑ کے بیٹھنے کی جگہ 2000 درہم کی ہوگی۔ اس زمانے میں شہر کوفہ 54 میل تک توسیع پا جائے گا، یعنی 18 فرسخ اور کوفہ کے محلات کربلا معلہ سے متصل ہو جائیں گے، اور حق سبحانہ تعالیٰ کربلا کو بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یہاں فرشتوں کی ایک فوج آ جا رہی ہوگی، مومنین کی آمد و رفت میں بھی بتحاشا اضافہ ہوگا، خدا کی رحمت و برکت کا نزول وہاں اس قدر زیادہ ہوگا کہ جو کوئی وہاں کھڑا ہو کر ایک دعا پڑے گا تو اس کو 1000 برابر اجر ملے گا۔ بس حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، اے مفضل، بے تحقیق زمین کے مختلف ٹکڑوں نے ایک دوسروں پر فخر جتلایا ہے، اور کعبہ معظمہ نے کربلا معلہ پہ اپنی برتری جتلائی، تو حق تعالیٰ نے کعبے کو وحی کی کہ اے کعبے کی سرزمین، خاموش رہو اور کربلا پر برتری نہ جتلاؤ، کیونکہ بتحقیق وہ سرزمین ایسی مبارک سرزمین ہے کہ وہاں پر موسیٰ کو ایک مرتبہ درخت سے انی انا اللہ کی آواز آئی، اور یہ وہی مقام بلند ہے کہ جہاں میں نے مریم اور عیسیٰ کو ٹھہرایا، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں امام حسین کے سر مبارک کو آپ کی شہادت کے بعد دھویا گیا، اور یہی وہ بہترین سرزمین ہے جہاں سے جناب رسول خدا نعم اعراج فرمائی، اور وہاں ہمارے شیعوں پر حضرت قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور تک بے پناہ خیر و برکت نازل ہوتی رہے گی۔ مفضل نے کہا، اے میرے مولا واقع مہدی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور کہاں جائیں گے؟ میرے مولا نے فرمایا،
السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك.